नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर गहराई से बात करने वाले हैं, महिला जागृति अभियान। ये पुस्तक, जैसा कि बता है, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला थी, उसी का एक हिस्सा है। ये 1988 से 90 के दौरान लिखी गई। तो हमारा मकसद है कि उस समय नारी जागरण को लेकर पूज्य गुरुदेव का क्या नजरिया था, उसको समझें।
हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने इस पूरे साहित्य को अपना ज्ञान शरीर माना था। उन्होंने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माताजी से कहा भी था कि मेरा ये ज्ञान शरीर ही है जो जिंदा रहेगा, और इसे, मतलब उनके शब्दों में, क्रांतिधर्मी साहित्य को जन जन तक पहुंचाना है। तो ये सिर्फ एक सामाजिक टिप्पणी भर नहीं है, इसमें एक आध्यात्मिक और आप कह सकते हैं युगीन दृष्टि है।
युगीन दृष्टि। तो चलिए फिर इस गहन विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं कि पूज्य गुरुदेव का ये ज्ञान शरीर नारी शक्ति के बारे में क्या कहता है, क्या खास था उसमें। शुरुआत तो बड़ी अद्भुत है। पुस्तक शुरू होती है नारी के उस परम पूज्य दैवी रूप से कि वो माँ है, विधाता की सबसे सुंदर रचना है, जीवन देने वाली ब्रह्म चेतना है। और ये बात भी कितनी सही है कि लक्ष्मी नारायण, सीताराम, इन युग्मों में नारी का नाम पहले आता है। ये शायद उसी दिव्यता का प्रतीक है।
हाँ, ये दिव्यता का पक्ष है, लेकिन पूज्य गुरुदेव फौरन ही उस विरोधाभास को भी सामने लाते हैं कि कैसे कैसे मध्ययुग के उस अंधकार वाले समय में इसी देवी स्वरूप को उसको अबला बना दिया गया, उसको कामिनी, भोग्या, यहाँ तक कि दासी की स्थिति में धकेल दिया गया। शिक्षा नहीं, सम्मान नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, मतलब एक तरह से बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया गया।
और इसका असर तो फिर पूरे समाज पर पड़ा होगा।
जाहिर सी बात है, जब समाज का आधा हिस्सा, जो कि शक्ति का स्रोत है, उसे ही आप कमजोर कर देंगे, अशक्त बना देंगे, तो उसका बोझ तो पूरे समाज को ही उठाना पड़ेगा ना। पूज्य गुरुदेव ने साफ लिखा है कि साथी को असमर्थ बनाकर रखने वाले को उसका भार भी वहन करना पड़ा।
सही कहा। फिर पूज्य गुरुदेव बात करते हैं एक परिवर्तन के तूफानी प्रवाह की, मतलब एक बदलाव की लहर।
हाँ, और उनका मानना था कि ये जो बदलाव है, ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये दैवीय चेतना से प्रेरित है। ये नारी शक्ति को उसके बंधनों से, उन जंजीरों से आजाद कराने के लिए आ रहा है। ये पश्चिम के नारी मुक्ति आंदोलनों जैसा सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी, एक आध्यात्मिक जागरण।
अच्छा, और इसी संदर्भ में वो 21वीं सदी को नारी सदी कहते हैं।
बिल्कुल, बहुत जोर देकर कहते हैं कि 21वीं सदी नारी की सदी होगी। वो विश्व मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और उस समय के हिसाब से उन्होंने उदाहरण भी दिए, जैसे केरल में लड़कियों ने कैसे शिक्षा में बढ़त मनाई, कम उम्र में शादी का विरोध किया, पंचायती राज में 30% आरक्षण को भी उन्होंने इसी दिशा में एक सही कदम माना था।
मतलब ये बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी होना था, सोच का बदलाव।
हाँ, मुख्य बात वही थी, वो जो भ्रांतियां थी, वो मूढ़ मान्यताएं कि नारी कमजोर है या हेय है, उनको तोड़ने का आवाहन था। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि समय की नब्ज पहचानो।
ये समय की नब्ज पहचानने वाली बात महत्वपूर्ण है,
बहुत ज्यादा। और ये सोच बदलने की बात सिर्फ समाज तक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों, खासकर पति पत्नी के रिश्ते तक जाती है। उनका आग्रह था कि दाम्पत्य जीवन सिर्फ वासना पूर्ति का साधन न हो। पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी को एक साथी समझे, उसे आगे बढ़ने में मदद करे, उसकी योग्यता बढ़ाने में सहयोग करे।
तो ये जो बड़ा बदलाव लाना था, इसके लिए रास्ते क्या सुझाए गए पुस्तक में, मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या थे?
देखिए, दो मुख्य रास्ते साफ तौर पर बताए गए।
पहला तो था शिक्षा।
शिक्षा,
हाँ, और खासकर प्रौढ़ स्त्रियों के लिए साक्षरता पर बहुत जोर था। और सिर्फ साक्षरता नहीं, बल्कि ऐसा साहित्य पढ़ना जो चरित्र निर्माण करे।
अच्छा,
और दूसरा?
दूसरा था स्वावलंबन, मतलब आर्थिक आत्मनिर्भरता। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, घर से किए जा सकने वाले काम, ताकि नारी आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहे। उन्होंने जापान का उदाहरण भी दिया था कि कैसे वहां स्त्रियां घर के काम के साथ साथ कमाई भी करती हैं।
तो शिक्षा और आर्थिक आजादी, लेकिन साथ में वो वैचारिक बदलाव की बात भी उतनी ही जरूरी थी। हाँ, वो तो बुनियाद थी, जैसे दाम्पत्य जीवन की गरिमा की बात हुई कि उसे वासना से ऊपर उठाकर आपसी सहयोग और विकास का मंच बनाया जाए। फिर दुश्चिंतन हटाने और सृजन अपनाने का आह्वान था, यहां तक कि जो यौन ऊर्जा है उसको नियंत्रित करके समाज सेवा जैसे ऊंचे कामों में लगाने की बात थी।
पूज्य गुरुदेव ने तो ये तक कहा कि नशे के बाद अगर सबसे ज्यादा विनाशकारी कुछ है तो वो अनियंत्रित कामुकता है, जिसने नारी के प्रति सम्मान को खत्म किया है।
और एक सुझाव जो शायद सबसे क्रांतिकारी था, है ना, वो प्रजनन पर रोक लगाने वाला।
हाँ, वो उस समय के हिसाब से बहुत बहुत ही क्रांतिकारी विचार था।
मतलब आज भी कई लोगों को ये अकल्पनीय लगेगा।
बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे पूज्य गुरुदेव का एक खास तर्क था। वो मानते थे कि वो जो युग संधि का काल था, मतलब 1988 से 2000 तक का जो महत्वपूर्ण बदलाव का दौर था, उस समय सारी ऊर्जा, सारे साधन नारी उत्थान और समाज के नवनिर्माण में लगने चाहिए, आबादी बढ़ाने में नहीं। और साथ ही जनसंख्या विस्फोट का खतरा तो था ही।
उन्होंने स्वीडन जैसे देशों का उदाहरण भी दिया, जहां बच्चों के पालन पोषण में पुरुषों की भी बराबर जिम्मेदारी तय की गई थी, उन्हें भी छुट्टी मिलती थी इसके लिए।
अच्छा,
तो पुरुषों की भी जिम्मेदारी।
जी, तो कुल मिलाकर देखें तो महिला जागृति अभियान ये 1990 के दशक की शुरुआत में एक जबरदस्त पुकार थी, नारी को उसकी खोई हुई गरिमा, उसकी शक्ति वापस दिलाने के लिए। ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं थी, बल्कि सोच में, मानसिकता में गहरे बदलाव की बात थी। शिक्षा, आत्मनिर्भरता, पारिवारिक रिश्ते, सब पर एक नई नजर।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये पुस्तक नारी जागरण को भारत और विश्व के उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य मानती है, और जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये पूज्य गुरुदेव के उस ज्ञान शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसे उन्होंने सब तक पहुंचाने का आग्रह किया था। ये सबके लिए सुलभ है और पढ़ने लायक है।
तो जाते जाते एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी उठेगा कि ये विचार जो लगभग 35 साल पहले लिखे गए थे, खासकर वो प्रजनन पर रोक जैसा सुझाव, वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, और वो उस दौर की जो तात्कालिकता थी, जो जरूरतें थी, उनके बारे में हमें क्या बताते हैं, ये सोचने वाली बात है।